राजवंश एम्पायर पर आया हुआ खतरा आशिका की वजह से टल चुका था। आशिका इशिका से उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच अच्छी दोस्ती थी। आशिका से बात करने के बाद इशिका सो चुकी थी। जब वो उठी तब अभिमन्यु ने उसे बताया कि इन सब के पीछे सुनैना राजवंश का हाथ था। सुनैना का नाम आते ही इशिका को पार्थ याद आ गया। वो पार्थ को भूल भी कैसे सकती थी? वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन पार्थ के दिए जख्म आज भी उतने ही गहरे थे। इशिका ने अभिमन्यु से यही पूछा, क्या सुनैना के साथ पार्थ भी इन्वॉल्व था? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका का हाथ सहलाते हुए कहा, नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने सुनैना रायचंद से बात की थी। पार्थ उनसे नफरत करता है और उनसे दूर चला गया। यही वजह है कि वो बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। सुनैना की बातों में आकर पार्थ ने भले ही प्लान बनाया था, लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही कभी नहीं देता था कि वो उन दवाइयों के जरिए हजारों लोगों की जान मुश्किल में डाले या इशिका की प्रेगनेंसी में उसे जेल भेज दे। जो भी था, इशिका के दिल में अभी भी पार्थ के लिए बेइंतहा नफरत थी। बिना सच जाने उसने इतने लोगों की जान के साथ खेलने की कोशिश की थी। इशिका को परेशान देखकर अभिमन्यु ने उसे गले लगाकर कहा, डोंट वरी, अब वो हमारी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। पार्थ कहाँ है कोई नहीं जानता। मैंने सभी फेमस हॉस्पिटल में उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्थ कहीं पर भी काम नहीं करता। उसका खुद का हॉस्पिटल भी आजकल उसकी हायर की हुई टीम संभाल रही है। उसके बारे में बात नहीं करते हैं, इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु ने भी उसकी बात पर हामी भरी। वो इशिका को परेशान नहीं करना चाहता था। वहां से इशिका और अभिमन्यु सीधे घर जा रहे थे। राजवंश एम्पायर पर आए इस खतरे को आशिका की मदद से दूर किया जा चुका था और हर तरफ सुनैना रायचंद की गिरफ्तारी की खबर थी। अफ्रीका के एक आइलैंड पर मेडिकल कैंप लगा हुआ था। वो एक फ्री कैंप था और वहां के लोग ज्यादा डेवलप नहीं थे। उस जगह की स्थिति इतनी खराब थी कि वहां पर इंटरनेट तक काम नहीं करता था। हाँ, खबर के लिए कई बार देरी से अखबार जरूर पहुंच जाते थे। अजीब बात है, इंडिया के होते हुए भी हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। क्या आपका मन नहीं करता अपने देश जाने के लिए? एक वार्ड बॉय ने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहा जो चेकअप कर रहे थे। मेरा वहां कोई नहीं है। अब इन लोगों के बीच में मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ जिन्हें अपने अंदर पल रही इतनी बड़ी बीमारी तक के बारे में खबर नहीं रहती, उसने जवाब दिया। फिर उसकी नज़र न्यूज़पेपर की तरफ गई तो एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो सुनैना की गिरफ्तारी की न्यूज़ थी और वहां बैठा डॉक्टर कोई और नहीं, पार्थ था। पार्थ जैसा बड़ा सर्जन इस वक्त एक छोटे से मेडिकल कैंप में इस तरह गरीबों का इलाज करता था। अगर ये कोई और सुनता तो वो हैरान रह जाता, पर पार्थ को अब इसी में सुकून मिलता था। तो आज भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हैं, पार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। उसने न्यूज़पेपर को उल्टा रख दिया। सुनैना को अरेस्ट कर दिया गया था, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद उसके पापों की भी यही सजा थी। बस वो खुश था ये सोचकर कि इशिका और अभिमन्यु अपनी जिंदगी में खुश हैं। पार्थ ने काम करते हुए अपना दिन बिताने की कोशिश की। वो अपनी तरफ से एक साल पहले हुए हादसे को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी आज न्यूज़पेपर सामने आने पर पार्थ को पुरानी बातें याद आने लगी थीं। उसे किसी से गिला शिकवा नहीं था सिवाय सुनैना के। मैं जानता हूं कि मेरी दी गई सफाई कोई मायने नहीं रखेगी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी अब मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा। पार्थ ने गहरी सांस ली और तुरंत अपना सामान पैक करने लगा। दुनिया के बेहतरीन सर्जनों में से एक पार्थ रायचंद पिछले एक साल से कहा था कोई नहीं जानता था। पार्थ भी यही चाहता था, पर अचानक अब उसने सबके सामने आने का मन बना लिया था। राजवंश एम्पायर पर हुए साइबर अटैक को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। उस दिन केशव और राधिका ने शादी की थी और उसी रात उनकी रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, लेकिन अचानक वो सब होने की वजह से उनकी रिसेप्शन पार्टी टल गई थी। आज एक हफ्ते बाद अभिमन्यु ने उनके लिए ग्रैंड पार्टी स्पॉन्सर की थी। पार्टी में मेहमान आने शुरू हो गए थे। इशिका और अभिमन्यु नेन्यू के एंट्रेंस पर खड़े उन सबको ग्रीट कर रहे थे। अभिमन्यु ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था तो इशिका ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था। रात के 10 बजे के करीब जब लगभग सारे मेहमान अंदर आ चुके थे तब अभिमन्यु ने इशिका को कमर से पकड़कर अपने पास किया और कहा, चलो अब हम भी पार्टी एंजॉय करते हैं। कब तक यहाँ खड़े होकर मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की गेस्ट को अटेंड करते रहेंगे? ये काम उनका होना चाहिए था। और वो हमारे मॉम डैड हैं। तुम आजकल बहुत शिकायतें करने लगे हो, अब नखरे दिखाना बंद करो, क्योंकि कोई और आने वाला है और मेरा सारा टाइम उसी को जाएगा, इशिका ने अभिमन्यु की नाक पकड़कर खींचते हुए कहा। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहले तुम्हारा सारा टाइम मेरा होता था। खैर छोड़ो, पहले भी मुझे अपने लिए टाइम निकलवाना आता था और अब भी मैनेज कर लूंगा। अभिमन्यु ने जवाब दिया और इशिका के हाथ को पकड़कर उसे किस कर दिया। अभिमन्यु और इशिका अंदर जाने को ही थे कि तभी वहाँ एक बिन बुलाए मेहमान दस्तक दे चुका था। उसे देखकर उन दोनों के ही चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो कोई और नहीं, पार्थ रायचंद था। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, इशिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। इशिका पार्थ को मारने के लिए बढ़ रही थी कि तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नामी सिर हिलाकर कहा, अभी सही वक्त नहीं है। तुम अपने डैड को जानती हो ना, वो पहले से ही पार्थ से बहुत गुस्सा है। अगर उन्होंने पार्थ को यहाँ देख लिया तो बिसे सिंघानिया का इतना खास दिन खराब हो जाएगा। पिछली बार भी मेरी वजह से उनकी रिसेप्शन पार्टी नहीं हो पाई थी। अंदर काफी सारे गेस्ट हैं इशिका। वहीं पार्थ ने कुछ देर उनकी तरफ देखा और फिर वो खुद ही उनके पास चला आया। उसके आते ही अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो? हमारी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बेहतर होगा पार्थ यहाँ से चले जाओ। मुझे इशिका से बात करनी है और वो किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पार्थ ने भी सख्ती से कहा। उसकी निगाहें अभी भी इशिका पर टिकी हुई थी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आऊंगी? मुझे तुमसे नफरत है पार्थ रायचंद। तुमने मेरे बच्चों की जान ली, मुझे धोखा दिया, हमें बर्बाद करने का सोचा, इशिका ने कांपती आवाज में कहा। जब भी वो उस मनहूस दिन को याद करती थी वो ऐसे ही अपना आपा खो देती थी। मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा किया तो नहीं इशिका। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत शिकायतें हैं और वो जायज भी हैं, पर एक बार बैठकर बात करते हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो, पार्थ ने इस बार शांत लहजे में कहा। इशिका और अभिमन्यु दोनों का ही पार्थ से बहस करने का या किसी तरह की एक्सप्लेनेशन लेने का कोई मन नहीं था, लेकिन इस वक्त जहाँ वे खड़े थे वहाँ किसी की भी नजर पड़ सकती थी। अभिमन्यु और इशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने फिलहाल वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। मेरे साथ आओ, अभिमन्यु बोला। केशव और राधिका की रिसेप्शन पार्टी उसी होटल में हो रही थी। अभिमन्यु इशिका के साथ पार्थ को लेकर ऊपर प्राइवेट रूम में पहुंच चुका था।
ऊपर आते ही अभिमन्यु ने गुस्से में पार्थ की कॉलर पकड़ ली। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें समझदार समझा था जो हमारी तकलीफ में होने का फायदा उठाकर गायब हो गए थे। तुम कब से बेवकूफ़ी करने लग गए जो खुद अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ आ गए? भले ही तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिला हो क्योंकि वो लैब जल गई थी, लेकिन तुम दूध के धुले हुए नहीं हो। मैं अच्छे से जानता हूं आयशा की जान तुमने ही ली थी। आयशा का जिक्र होने पर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे इस बात का अब तक पता नहीं था। जब अभिमन्यु उसे ढूंढने के लिए उसके बारे में सब कुछ पता लगाने निकला था तब उसे इस बात का पता चला था कि आयशा को पार्थ ने ही मारा था। पार्थ ने अभिमन्यु को धकेल कर खुद से दूर किया और सिर हिलाकर कहा, और तुम्हें कब से उससे हमदर्दी होने लगी? तुम जानते भी हो वो क्या प्लान कर रही थी। तुम्हारा बच्चा चुराकर उसे ठीक वैसे ही जिंदगी देने वाली थी जैसे उसकी माँ ने इशिका को दी थी। शुक्र मनाओ कि मैंने उसे रोक लिया, वरना ऐसी शातिर लड़की तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती थी। वो जैसी भी थी तुमसे तो कम ही बुरी थी। कम से कम उसकी वजह से मेरे बच्चों की जान तो नहीं गई। अफसोस हो रहा है कि इतनी गिरी हुई हरकत करने के बावजूद तुम यहां बैठकर खुद को सही साबित करने पर तुले हुए हो, इशिका गुस्से में बोली। पार्थ ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके कहा, मैं ये कहकर तुम्हें हर्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जान तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से गई है। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था इशिका, मैं पहले भी उस प्लान को लेकर श्योर नहीं था। बोलते हुए पार्थ कुछ पल रुका और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है जब मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं इशिका को पसंद करने लगा था। मैं उसे कभी इस तकलीफ में नहीं देख सकता था। ये मेरे आने का इंतजार कर सकती थी। मैं इसकी बात मानकर उस लैब को खुद बर्बाद कर देता, लेकिन इसने इम्पल्सिव होकर पूरी लैब को जला डाला, जैसे मैं कल ही तुम्हें बर्बाद करने को निकल रहा था। हमें तुम्हारी फीलिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। इशिका ने जो भी किया वो सही था। वो डिसीजन ज़रूर इम्पल्सिव था, लेकिन तुम जैसे लोगों पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ना जाने वो जहर बेचकर कितने लोगों की जान के साथ खेलने का सोचा था तुमने, अभिमन्यु गुस्से में बोला। पार्थ अपनी कितनी भी सफाई क्यों ना पेश करते, लेकिन सच तो ये था कि वो अभिमन्यु और इशिका की नज़रों में गुनहगार था। जब पार्थ अपनी दलीलें देते हुए थक गया तब उसने बुझी हुई आवाज़ में कहा, मॉम ने जो किया उसमें मेरा हाथ नहीं था। ट्रस्ट मी, मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, सच कहो तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। यकीन किया था पार्थ हमने तुम्हारे ऊपर। दादी को तुम पर यकीन होने लगा था कि सुनैना रायचंद के बेटे होने के बावजूद तुम अलग इंसान हो। क्या किया तुमने, धोखा दिया हमारा, अभिमन्यु ने पार्थ की आंखों में देखकर कहा। मुझे भी इस बात का अफसोस है और मैं खुद को साबित करके रहूंगा कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूं। मैं अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे यही लगता था कि उनके साथ बुरा हुआ है। सच पता चलते ही मैंने मॉम से सारे कनेक्शन तोड़ दिए। मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस आखिरी बार ये बताने आया था कि मैं कभी इशिका को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, खासकर तब जब मुझे उससे प्यार हो गया था। पार्थ ने आखिरी बार अपनी सफाई में कुछ कहा। अचानक इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभरी। उसने नम आंखों से कहा, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो क्या तुम अपना प्लान बदलते पार्थ? तुम उस जहर को मार्केट में उतारने वाले थे, मुझे जेल भिजवाने वाले थे, अभिमन्यु को बर्बाद करना चाहते थे। अचानक तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई और सारी गड़बड़ मेरे हाथों हो गई, तो तुम अब यहां संत बनकर आ गए कि तुम बिल्कुल ठीक थे और मैंने ही जज्बात में आकर गलत फैसला ले लिया। पार्थ की नजरें झुक गईं। पिछले एक साल से वो सुकून में था, तो बस यही सोचकर कि इशिका की जिंदगी में जो तकलीफ आई उसके कारण वो खुद है। आज इशिका ने उसे आईना दिखा दिया था। पार्थ के चेहरे पर पछतावे के भाव देखकर अभिमन्यु ने कहा, अब तो तुम्हें किसी तरह की सजा देने का भी मन नहीं करता पार्थ। अपनी माँ के पीछे छुपकर तुम अपने गलत कारनामों को सही ठहरा सकते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या सच में तुम गलत नहीं थे। पार्थ ने गहरी सांस ली और उनकी तरफ देखकर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैं गलत था, मान लिया, और अब खुद को सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है तब तक मिस्टर केशव सिंघानिया मुझे ना ढूंढ ले, वरना वो बर्बाद कर देंगे सब कुछ। उम्मीद है तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। आखिरी बार मिलने के लिए आया था। इशिका और अभिमन्यु चाहते तो पार्थ को पुलिस के हवाले कर सकते थे, या अभिमन्यु खुद पार्थ को सजा दे सकता था, लेकिन पार्थ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो जिस तरह पछतावे में डूबा था, उससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती थी। इशिका का चेहरा अपनी आंखों में भरकर पार्थ वहां से हमेशा के लिए चला गया। उसके जाते ही इशिका ने अभिमन्यु को अपने सीने से लगा लिया। ये कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन इसने आयशा को मारकर हमारी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म कर दी। मुझे सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर वो हमारे बच्चे को चुरा लेती तो क्या करती, इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। हाँ सही कहा, लेकिन इस बात के लिए हम इसे अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसने किसी का मर्डर किया है, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वहीं पार्थ जब दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। उसे आयशा को मारने का अफसोस कभी नहीं था, और अब तो अभिमन्यु और इशिका भी उसके किए से सहमत थे। पार्थ वहां से हमेशा के लिए चला गया था, अपनी नई राह खोजने के लिए, जो उसे उन अनडेवलप्ड एरिया के लोगों को ठीक करके मिलती थी। वहीं अभिमन्यु और इशिका भी रिसेप्शन पार्टी में नीचे आ गए थे। इशिका आशिका को लेकर अभी भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उस दिन के बाद से उसकी आशिका से बात नहीं हुई थी। आज आशिका अपनी माँ के साथ फैमिली गैदरिंग के लिए जाने वाली थी। इशिका जानना चाहती थी कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके पास आशिका का मैसेज आया, जिसे देखकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। अचानक इशिका को अपनी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह दिखाई देने लगी थी। अब उसे आशिका की कहानी शब्द दर शब्द सही लग रही थी कि उन दोनों की किस्मत सच में एक जैसी है। ऐसा क्या दिखाया आशिका ने जो इशिका को अपनी जिंदगी याद आ गई? अगले पार्ट में पता चल जाएगा। वैसे सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है, आखिरी चैप्टर होने की वजह से थोड़ा बड़ा हो गया है, तो प्लीज आप लोग भर भर कर समीक्षा कीजिएगा।